पृष्ठ संख्या 25। वह राकेश द्वारा निरंतर सत्य केंद्रित निर्णय लेने का उसकी प्रतीति और प्रत्यक्षता का रचनामूलक प्रमाण है। बेकारी की मार का आतंक फिर सर पर आ गया। काफी दौड़ धूप करके शिमला में मिशनरी स्कूल में नौकरी कर ली। अनुभव तब भी बदले नहीं, मन स्थिति तब भी सहज नहीं रह पाई। जिंदगी के रूटीन से यह शख्स बहुत घबराता था। बहुत कोफ्त होती है इस जिंदगी से, वही रोज की जिंदगी अनचाही। अनमने ढंग से किया काम, एक लंबे सिलसिले की एक सी कड़ियां एक से ढंग से रोज रोज जोड़ते जाना, जैसे यह जिंदगी नहीं फक्त एक जिंदगी नुमा खेल है। शिमला की नौकरी के समय अपने को दोहराते जाने की, वक्त पर पहुंचने की दौड़ की कसक हमेशा राकेश के मन में बनी रहती। बहुत से सवाल, बहुत सी उलझने। प्रभु ईसा को कभी नौकरी नहीं करनी पड़ी, वरना सारा टेस्टामेंट ही बदल गया होता। एक-एक करके 7 पीरियड पढ़ा सकते थे ईसा मसीह, इतने पीरियड। इससे कहीं आसान था क्रॉस कंधे पर लेकर चलना। रह रह कर यह एहसास उसे तकलीफ पहुंचाता कि मैं कहाँ हूँ, मास्टर और उसका काला चोंगा। हंसी भी उलझन भी, उस चोंगी को उतार फेंकने की छटपटाहट भी। बरामदों में ड्यूटी देते समय भी वह यही सोचता है। क्लासें पढ़ाने के लिए ही नहीं, शाम को ड्यूटी देने के लिए भी चोंगा पहनो। क्यों? क्योंकि तुम मास्टर हो। मतलब जो ड्यूटी दे रहा है वह मास्टर है, तुम जाओ भाड़ में। यह मैं का एहसास ही है कि वह अपने को किसी उत्तरदायित्व से बांध नहीं पाता, कहीं भी अपने को स्पेयर पार्ट नहीं बना पाता। मास्टर की बंधी बंधाई क्रमबद्ध जिंदगी उसे मास्टर नाम का यंत्र लगती, और डूबते सूरज की लाली में बहुत अकेला। उदास नजर आते स्कूल की घंटी के पीतल से उसके मन का तादात्म्य हो जाता, क्या मैं कुछ भी नहीं, इस पीतल की अपनी चमक कुछ भी नहीं। क्या वह चोट किए जाने पर गूंज पैदा करने के लिए ही है, उस गूंज को प्रकट करने के लिए प्रतीक्षा। और फिर हर वक्त एक बेचैनी, किसी एक जगह न टिकने की, कहीं और जाकर किसी और तरह कुछ और करते हुए जिंदगी बिताने की। नतीजा यह कि पहली बार ठर्रा चढ़ाया, बड़ी चहलकदमी की, सड़क के चक्कर लगाए, नींद नहीं आई, और सन 52 तक आते आते त्यागपत्र। निश्चय किया केवल लेखन और कम से कम साधनों में गुजारा करके अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का, लेकिन मन इस स्थिति से लड़ नहीं सका। जालंधर के उसी कॉलेज से विभागाध्यक्ष पद का जब ऑफर मिला, उसने स्वीकार कर लिया। सन 50 से 54 तक का समय राकेश के लिए बहुत हलचल का समय रहा, व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, सभी स्तरों पर। इस बीच उसने कहानियां नहीं लिखी, नई चुनौतियां, नए प्रयत्न, नए आघातों, आकर्षणों, असफलताओं ने उसे घेरे रखा। संदर्भ 1, सारिका, मई 1968, व्यक्तिगत डायरी, पृष्ठ संख्या 19। 2, वही, 3, वही। पृष्ठ संख्या 26। जीवन इतना विशाल लगता, संपर्क इतने चिन्ह छोड़ता कि बार बार अपनी असमर्थता का बोध होता। रचना का प्रयत्न खोखला लगता, खोखले शब्दों को हवा में उछालने की सार्थकता ही क्या थी। इस आंतरिक असंतोष और अस्थिरता के बीच केवल यात्रा विवरण लिखा जो आखिरी चट्टान तक के नाम से प्रकाशित हुआ। फिर काफी लंबे समय के बाद पहली कहानी सौदा लिखी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण शुरुआत। एक मंझते हुए संवेदनशील रचनाकार से साक्षात्कार, क्योंकि यहीं से उसकी रोटी, मलबे का मालिक जैसी सार्थक कहानियों की रचना का क्रम चल पड़ा। इससे पहले सन 50 या 52 तक राकेश ने कहानियाँ, रिपोर्टाज, निबंध सभी लिखे और वे प्रकाशित भी होते रहे, लेकिन इनमें एक तो इस समय तक उनका रचनाकार परंपरा और पृष्ठभूमि से बंधा हुआ दिखाई देता है, दूसरे उसमें आदर्शवादिता का आग्रह भी मिलता है और प्रगतिवादी दौर के सारे साहित्यिक फॉर्मूले भी वर्ग भेद, धर्माडंबर के प्रति आक्रोश, भावुकता, त्रिकोण में बंधा प्रेम, ये सब उसके साहित्य के विषय में यानी अप्रोच कमोवेशी रूढ़िबद्ध था, लेकिन आखिरी चट्टान तक से उसकी रचना यात्रा में बहुत बड़ा मोड़ आता है। उन्हीं के शब्दों में अपने परिवेश से कटे होने की अनुभूति का स्थान एक सर्वथा दूसरी अनुभूति ने ले लिया था और वह थी जुड़े होने की अनिवार्यता की अनुभूति। एक तरह की कड़वाहट इस अनुभूति में भी थी। वह कड़वाहट निरर्थक और आरोपित नहीं थी। नौकरी का यह पीरियड कुछ लंबा रहा और लेखन के लिए शुभ भी, लेकिन 57 तक आते आते यहाँ से भी इस्तीफा दे दिया और इरादा किया कि अब नौकरी नहीं करनी है, लेकिन आर्थिक दबाव के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में 60 में लेक्चररशिप ले ही ली, जो बहुत जल्दी ही छोड़ भी दी। फिर 62 में नए क्षेत्र में कदम रखा अपने को आजमाने के लिए। बम्बई में सारिका के संपादक हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया का एयर कंडीशन कैबिन, सारी सुविधाएं, सुख आराम, फ्लैट, गाड़ी, एयर कंडीशनर, कुछ दिन बड़ा आत्मीय लगा। सारिका को नया रूप रंग दिया, उसमें प्रकाशित साहित्य को नया मोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह भी रास न आया। एक और इस्तीफा और फिर फ्रीलांस राइटर की स्वतंत्र जिंदगी शुरू की। बहुत से कष्ट आए, लेकिन स्वतंत्र जिंदगी का यह निर्णय मृत्यु के समय तक नहीं बदला था। सन 57 से 62 के इस काल में ही दो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गईं। एक पहला नाटक आषाढ़ का एक दिन, दूसरी अंधेरे बंद कमरे, बड़ा उपन्यास। दोनों में राकेश के अनुभव तात्कालिक शर्तों को स्वीकार किए बिना जुड़े रहने के सार्थक संदर्भों की खोज, सारे द्वंद्व प्रश्न उलझने, आंतरिकता की खोज मूर्त हुई है। रचनाशीलता ने इनमें नया ठोस आयाम प्राप्त किया है। बहुत सी कहानियां भी इसी दौर में लिखी गईं। एक और जिंदगी ब्रैकेट में 1961 ब्रैकेट क्लोज भी। सभी में संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलती मनः स्थितियां हैं। व्यक्ति के माध्यम से पूरे परिवेश का अंकन। संदर्भ एक, सारिका, फरवरी 1973, पृष्ठ संख्या 22। पृष्ठ संख्या 27। उसने यहाँ से साहित्य को, रचनाओं को, किसी विधा को एक निरंतर विकासशील दृष्टि के रूप में लेना शुरू किया। उसकी आंतरिक संभावनाओं के उजागर होते रहने की निश्चितता आई। राकेश का लेखन एक बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरा है। उसने बार बार लिखा, अपने लिखे को अवास्तविक जानकर नकारा है। इसीलिए कभी कभी उसे लगता है कि वह कुछ मेरे अंदर नहीं है जिससे व्यक्ति सचमुच लिख सकता है, वरना लिखने के लिए क्या पहाड़ खोदने की जरूरत है। अक्सर लगता रहा है कि कुछ ठीक सांचे में नहीं ढला, शब्द अधूरे हैं, दिमाग में जंग लग गया है, लेकिन लिखना उसके लिए मस्ट है, क्योंकि वह सामान्य आदमी की तरह केवल देख सुन चलकर संतुष्ट नहीं रह सकता। अक्सर अपना खालीपन एक अपराध लगता रहा है। दिक्कत यह है कि इस खालीपन के लिए वह अपने को ही उत्तरदायी नहीं मान पाता। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कि राकेश के अपने स्वभाव में एक अंतर विरोध रहा है। वह अकेलापन भी चाहता है, भीड़ भी चाहता है। माँ और पिता के अलग अलग स्वभाव की विशेषताएं एक ही में मिलकर उसके मन में निरंतर एक युद्ध भूमि बनाए रहती है। एक ओर अपने कहे और किए पर संदेह, दूसरी ओर अपनी दुर्बलता न स्वीकारने का बाहरी हठ। सोचता हूँ कहीं मैं एक विभक्त व्यक्तित्व तो नहीं लिए हुए हूँ। हमेशा यह कचोट कि गुजरता दिन हाथ से निकल गया, दिन यूं ही बीतते जाने का एहसास और छटपटाहट। हर सुबह से पहले एक नया इरादा, हर शाम को गहरी उदासी। सीधी सीधी सरल ढर्रे पर चलने वाली जिंदगी में अपने को अभिव्यक्त न कर पाने के कारण अपने न होने की थकान उसे हमेशा तोड़ती रही है। वह स्वयं चाहता रहा है कि उलझने उसे उलझाती रहें। क्यों आज का दिन कल के दिन में ऐसे नहीं उलझ जाता कि सचमुच होने का एहसास हो? गांठें कुछ इस तरह उलझ जाएं कि उन्हें सुलझाने सुलझाने में उंगलियों के पोर टूटने लगे, लगे कि होने की वास्तविकता यह है। सुबह से शाम के बीच इतनी उलझने, दुखने, छटपटाने वाला व्यक्ति ही मैं है। स्लाइस निगल कर ब्लैक बोर्ड पर लकीरें खींचने वाला, हाउ फाइन, हाउ आर यू टूडे, क्वाइट वेल, थैंक यू वाला तो मास्टर है। एक ही व्यक्तित्व के ये दो पहलू हैं कि वह आदमी भी रहना चाहता है और सामान्य से अलग, असाधारण और विशिष्ट भी। मैं कहाँ हूँ कि बेचैनी जो उसे हर बार एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए विवश करती रहती है। राकेश स्वयं जानते हैं कि अपनी तरह से, अपनी इच्छा से जीना अप्रत्याशित स्थितियों की कामना करना है, लेकिन यह भी उसकी मजबूरी है। जो सामने प्रत्यक्ष नहीं है, ओट में है, उसे उधर जाकर देखने की आकुलता, लक्ष्य मिले या न मिले, भविष्य बने या न बने, यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है निरंतर कोशिश करते रहना, चलते रहना और चलते रहना। क्या यही कारण नहीं है कि राकेश के नाटकों के पात्र भी किसी लक्ष्य या समाधान तक नहीं पहुंच पाते? द्वंद्वों, अनिश्चित यात्रा की उलझनों में फंसे ही दिखाई देते हैं। संदर्भ 1, सारिका, अगस्त 1968, पृष्ठ संख्या 73। 2, सारिका, मई 1968, पृष्ठ संख्या 19।